नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने जीविका समूहों को उद्योग और व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते सहकारी बैंक के गठन को मंजूरी दी। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर बल दिया। डॉक्टर जोशी आज मोतिहारी में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट देने का आदेश दिया। और प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में देर रात बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आज राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। बिहार में जीविका समूहों का अब अपना सहकारी बैंक होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी है।
बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन एवं निबंधन किया जाएगा। ये एक बैंक होगा, ये जीविका का अलग से एक बैंक होगा, कॉपरेटिव बैंक। और इसमें अब जीविका की जो दीदियां हैं वो अब इस बैंक से लोन ले सकेंगी।
वहीं एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान के निकटतम आश्रितों को 50 लाख रूपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद अब राज्य कर्मियों को 55% की दर से टीए मिलेगा। नई व्यवस्था जनवरी 2025 के प्रभाव से लागू होगी।
केंद्रीय वेतनमान में जो डीए इंक्रीज हुआ है उस पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। जो सप्तम केंद्र पुनरीक्षक वेतनमान है उसमें 1/1/2025 के प्रभाव से 53 के स्थान पर 55 होगा। फिफ्थ पे कमीशन में 455 के स्थान पर 466 होगा 1/1/2025 के प्रभाव से। और सष्टम का 246 से बढ़ के 252 1/1/2025 के प्रभाव से होगा।
डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि गया शहर को अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जल जीवन हरियाली अभियान को वित्तीय वर्ष 2029-30 तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। निर्वाचन आयुक्त डॉ विवेक जोशी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर बल दिया है। साथ ही उन्होंने मतदान प्रक्रिया में दिव्यांग और बुजुर्गों की अधिकतम सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। डॉक्टर जोशी ने कल पटना में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और सहभागी बनाने के लिए प्रशासन को रचनात्मक पहल करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयुक्त आज मोतिहारी में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच करेंगे। साथ ही वे बेतिया में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और पीएलओ के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और क्षेत्र भ्रमण करेंगे। डॉक्टर जोशी कल वाल्मीकिनगर और सोमवार को वैशाली का दौरा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने बिहार सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि 18 महीने का डीएलएड कर चुके उम्मीदवारों के दावे अगले शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में स्वीकार किए जाएंगे, भले वे उम्र सीमा से बाहर ही क्यों न हो गए हों। इधर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रदेश की बाहर के संस्थानों से जीएनएम कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को स्टाफ नर्स की बहाली प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी आगामी शैक्षणिक वर्ष से जनसंचार और पत्रकारिता में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी कार्यक्रम शुरू करेगा। संस्थान ने कार्यक्रम के लिए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। आईआईएमसी की कुलपति अनुपमा भटनागर ने बताया कि प्रवेश का विवरण बाद में घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत आज पटना जीपीओ कोलंबर के पास बकरी बाजार में मल्टी मॉडल हब और नव निर्मित सबवे का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मौजूद रहेंगे। मल्टी मॉडल हब में विभिन्न प्रकार के वाहनों के पार्किंग की अत्याधुनिक व्यवस्था है। आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच समूचा राष्ट्र देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सैन्य बलों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने करगिल युद्ध में अनुकरणीय बहादुरी का परिचय दिया था।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के निवासी राइफलमैन संजय कुमार 1996 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में शामिल हुए। 4 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध के दौरान राइफलमैन संजय कुमार मुश्को घाटी में .4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने वाली टीम के प्रमुख स्काउट थे। जब हमले के लिए टीम आगे बढ़ रही थी तो एक जगह से दुश्मन ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी और टुकड़े का आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमला किया जाए। उन्होंने आमने सामने की मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानियों को मार गिराया और दूसरे ठिकाने की ओर बढ़े। अचानक हुए हमले से दुश्मन बौखला कर भाग खड़ा हुआ और इसी भगदड़ में दुश्मन अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गए। संजय कुमार उसी यूनिवर्सल मशीन गन से दुश्मन का ही सफाया शुरू कर दिया और फ्लैट टॉप क्षेत्र को दुश्मन के हाथों से छीन लिया। जख्मी होने के बावजूद राइफलमैन संजय कुमार दुश्मन से जूझते रहे और वीरता, साहस और असाधारण उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रदेश भाजपा की ओर से जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कल आरा, भागलपुर, सीतामढ़ी और कटिहार में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में देर रात बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुपौल, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार और मधुबनी समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, गया, नालंदा और लखीसराय समेत राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है।
दिनांक 17 मई 2025 को राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग और पटना जिले में गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है। राज्य के पश्चिम एवं उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है।
इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिले के पघा में धूल भरी आंधी और बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 8 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। वहीं मधुबनी समेत अन्य स्थानों पर तेज बारिश होने से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पटना हाईकोर्ट में 19 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अवकाश के दौरान आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए अवकाशकालीन पीठ गठित की गई है। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अवकाश अवधि में न्यायालय का कार्यकाल सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक होगा। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र के 2436 पदों के लिए अंतिम मेधा सूची जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी gp.bihar.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के अपग्रेडेशन कार्य की अवधि 19 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। बिजली कंपनी के अनुसार इस अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को रिचार्ज की जानकारी नहीं मिलेगी। दैनिक रीडिंग और अन्य मीटर डेटा का अपडेट निर्धारित समय पर नहीं हो सकेगा। कंपनी के अनुसार जैसे ही अपग्रेडेशन का काम पूरा होगा सभी सेवाएं बहाल हो जाएंगी। इस अवधि में किसी भी उपभोक्ता की बिजली नहीं काटी जाएगी। आईपीएल क्रिकेट एक सप्ताह के बाद आज फिर शुरू हो रहा है। आज बेंगलुरु में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण 9 मई को आईपीएल प्रतियोगिता निलंबित कर दी गई थी। मधुबनी जिले के लदनिया के पीओपी के एसएसबी जवानों ने नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे चीन के एक और नेपाल के दो नागरिकों को गिरफ्तार किया है। तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौर में भारत से नेपाल की सीमा में प्रवेश कर रहे कनाडा के नागरिक हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वह बिना वैध वीजा के भारत में रह रहा था। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र की खेरिया पंचायत के बेलाल चौक के पास मखाना खेत में ट्रैक्टर के पलट जाने से चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई। रोहतास जिले के नोखा के धर्मपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसरित गांव के पास तीन हथियारबंद अपराधियों ने एक बैंक के सीएसपी संचालक से लगभग 2.5 लाख रूपये लूट लिए। सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय रतनपुरा मकतब के शिक्षक को पीआरसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य में जीविका समूहों का अपना सहकारी बैंक होगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, गया शहर का नाम अब गया जी। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, अंचल से विभाग तक रखे नजर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, रक्षा मंत्री ने कहा पाक को दी मदद पर फिर सोचे आईएमएफ, पैसा टेरर फंडिंग में जाएगा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, जगतगुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार की महिलाओं को नीतीश का तोहफा, 6 से 25 रूपये में महिलाएं लेंगी लग्जरी पिंक बस सेवा का आनंद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने जीविका समूहों को उद्योग और व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते सहकारी बैंक के गठन को मंजूरी दी। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर बल दिया। डॉक्टर जोशी आज मोतिहारी में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट देने का आदेश दिया। और प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में देर रात बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। आज राज्य के उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।